अब प्रियंका के जिस्म का स्वाद चख लेने के बाद उसने उसे और गहरी मोहब्बत कर ली थी और कह दिया कि वो प्रियंका से शादी कर लेगा। लेकिन प्रियंका को अरमान पसंद आने लगा था। अब आगे अरमान की मस्कुलर चेस्ट, उसकी बॉडी, उसके परफेक्ट जॉ लाइन, एकदम परफेक्ट आदमी जो कि हॉट और हैंडसम था। अब प्रियंका डेस्परेटली अरमान को चाहती थी, उसे ढेर सारा प्यार करना चाहती थी। अरमान के सामने उसे अपना बॉयफ्रेंड एकदम पानी कम लग रहा था। लेकिन फिलहाल उसने अपने बॉयफ्रेंड की ओर देखते हुए कहा, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें उससे पहले मेरा एक काम करना होगा। मैं अपनी बहन से बहुत नफरत करती हूँ, जो कि अरमान सिंघानिया की बीवी है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसे मेरे लिए किडनैप कर लो। जैसे ही प्रियंका ने अपने बॉयफ्रेंड को ये काम दिया, उसके बॉयफ्रेंड के चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट आ गई थी। और वैसे भी जब से अरमान सिंघानिया ने पूरी मीडिया के सामने प्रियंका को अपनी बीवी घोषित किया था, तब से उसका बॉयफ्रेंड अरमान सिंघानिया से चिढ़ा हुआ था। उसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से उसकी गर्लफ्रेंड को अपनी बीवी कहने की? इसीलिए वो डेस्परेटली अब अरमान से बदला लेना चाहता था। हालांकि अरमान के आसपास भी जाने की उसकी कोई औकात नहीं थी, लेकिन अपनी प्रियंका के इस तरह से कहने पर उसे मौका मिल चुका था, क्योंकि नानी माँ ने प्रियंका और उसकी माँ सीमा को ताने मारने के लिए आस्था के माँ बनने की खबर और साथ साथ ये खबर भी दे दी थी कि आस्था एक बार फिर से कॉलेज ज्वाइन कर रही है। तो तब से प्रियंका आग बबूला हो उठी थी। इसीलिए उसने सोच लिया कि वो आस्था को इस तरह से खुश नहीं रहने देगी और उसकी जिंदगी की सारी खुशियां बर्बाद कर देगी। वहीं दूसरी ओर सभी खाना खाकर अपने कमरों में चले गए थे। अरमान ने आस्था को बड़े ही प्यार से अपनी बाहों में होड़ करके रखा हुआ था और उसे प्यार से सुला दिया था। जल्दी ही अरमान के फोन पर एक नोटिफिकेशन शो हुई। अरमान ने आस्था को बड़े ही प्यार से बेड पर लिटाकर उसे चादर से कवर किया और उसके बाद उसने अपना गेटअप चेंज कर लिया। अरमान ने एकदम ब्लैक कपड़े पहने थे, जो एकदम ब्लैक डेविल का रूप थे। ब्लैक कपड़े पहनकर अरमान बेहद हैंडसम दिखाई दे रहा था, लेकिन उस वक्त उसका ऑरा बड़ा ही खतरनाक लग रहा था। अब अरमान जल्दी ही वहां से निकल चुका था और अपने फार्म हाउस पर पहुंच चुका था। अरमान का फार्म हाउस सब भले ही नॉर्मल लोग उसे देखें तो एक नॉर्मल खूबसूरत सा फार्म हाउस दिखाई देगा, लेकिन असल में उस फार्म हाउस को देखकर कितनी खतरनाक वेव करती थी इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। जल्दी अरमान वहां जाकर अपनी हेड चेयर पर बैठ गया था और उसने देखा कि वहां पर ऑलरेडी पहले से ही 10 से 12 लोगों को हाथ बांधकर बिठाया गया था। अरमान जैसे ही वहां गया, वो सब लोग अरमान के कदमों की आहट से ही थर थर कांपने लगे थे। तभी अरमान ने अपने आदमियों को इशारा किया और देखते देखते सभी ने उनके मुंह के ऊपर से जो काला कपड़ा ढंका हुआ था उसे हटा दिया गया। अब अपने सामने डेविल किंग को देखने के बाद वो सभी लोगों के चेहरे से पसीना निकलना शुरू हो गया था। इस वक्त रात के 2 बज रहे थे और रात के 2 बजे अरमान उस वक्त अपने फार्म हाउस पर आया था, क्योंकि वो इस मीटिंग के बारे में आस्था या किसी को भी भनक तक नहीं लगने देना चाहता था। अरमान बारी बारी से उन सबको देख रहा था। वो सब वही लोग थे जिन्होंने अरमान के खास आदमियों को मारकर डेविल किंग की कुर्सी पर अबीर सिंह राठौर को बिठाया था। हालांकि अबीर ने साफ साफ इस बात के बारे में बोला कि उसे अरमान को डेविल किंग की कुर्सी वापस देने के लिए तैयार है, लेकिन अरमान सिंघानिया को किसी की कोई भीख नहीं चाहिए थी और वैसे भी अरमान से जिंदगी ने इतना कुछ छीना था कि अब उसने जिंदगी से मांगना छोड़ दिया था। वो अपनी जिंदगी से छीना जानता था, जो कुछ उसका हक था उसे लेना जानता था। तभी अरमान ने बारी बारी से सबकी ओर देखा और हल्का हल्का उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी उनमें से एक आदमी बोला, हमें माफ कर दीजिए किंग, हमारी कोई गलती नहीं है, अबीर सिंह राठौर ने हमें मजबूर किया था, हमें माफ कर दीजिए किंग। एक साथ सारे लोग बोलने लगे। उस वक्त वहां पर कम से कम 12 से 13 लोग मौजूद थे, जो सभी बड़ी ही बुरी कंडीशन में थे, क्योंकि जब अरमान को जैसे ये पता चला कि अबीर सिंह राठौर से डेविल किंग की कुर्सी वापस देना चाहता है, तो अरमान के माथे पर बल पड़ गए थे, क्योंकि वो अबीर से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं रखना चाहता था। अबीर अब तक अगर जिंदा था तो सिर्फ और सिर्फ अरमान के किए गए एक वादे की वजह से, वरना अबीर की जान कब की चली जाती। इसीलिए अबीर का किसी तरह का कोई फेवर ना लेते हुए अरमान ने जल्दी टाइगर, मारिया, साथ ही साथ आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान को इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि उन्हें क्या करना था। इसीलिए आकाश और सुमित आदमियों को इकट्ठा करके लेकर आए थे। आहान और ध्रुव दोनों ने ही अपनी बचकानी गरकत शो करते हुए उन लोगों को अगवा किया था। एक तो जब ध्रुव एक आदमी को उठाने के लिए गया जो कि बच्चों की तस्करी का स्पेशलिस्ट था, तो जैसे ही वो वहां गए, उन्होंने वहां जाकर देखा कि उस वक्त वो आदमी वॉशरूम में था, उसने कपड़े तक नहीं पहने थे। आहान उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगा और गर्दन मटकाते हुए बोला, आपका तो कितना ज्यादा पेट निकला हुआ है अंकल, फिर भी अपने डेविल किंग से पंगा ले लिया। उस वक्त ध्रुव को आहान पर बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि वो लोग किसी से कोई मजाक नहीं उड़ा सकते थे, लेकिन आहान का तो कब मुंह बदल जाए किसी को कोई पता ही नहीं। रहता। अब आहान ने जल्दी ही एक कपड़ा उसको लुंगी टाइप बनाकर उसके तोन से लेकर नीचे तक लपेट दिया था और हड़बड़ा कर बोला, अब बनियान पहनने का तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं आपको इतने कम समय में सिर्फ लुंगी ही पहना सकता हूँ। और तभी ध्रुव ने देखते देखते इंजेक्शन उसके गर्दन के पास इंजेक्ट कर दिया था। उसी तरह से उन्होंने सभी को अगवा किया था और वहां ले आए थे। उसके बाद अरमान को इन्फॉर्म कर दिया था और अरमान इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आस्था को प्यार से सुलाकर सीधा फार्म हाउस पहुंच चुका था और बाकी सब भी उसके पीछे पीछे फार्म हाउस आ गए थे। तभी अरमान ने उन सब की ओर देखते हुए कहा, गलती आप लोगों की नहीं है, और एक और बात, डेविल किंग तुम लोगों की जान नॉर्मल वे में नहीं लेगा। मैंने सुना है कि अभीर सिंह राठौर खुद तुम्हें मेरे सामने झुकाने वाला था, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए तुम लोगों को अपनी जान तो देनी ही होगी। ये बोलकर अरमान बारी बारी से उन सबको देखने लगा था। मौत का खौफ उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें इस बात का यकीन भी था कि जिस धंधे में इस वक्त वो मौजूद हैं, उसमें मौत उन्हें कब निकल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। और वैसे भी उन्होंने सीधा सीधा अरमान सिंघानिया द डेविल किंग से पंगा लिया था, तो उसी दिन उन्होंने अपने सर पर कफन बांध लिया था। लेकिन उस वक्त उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि अभीर सिंह राठौर भी कुछ कम नहीं था, इसीलिए दोनों पावरफुल लोगों के बीच में वो लोग पूरी तरह से पिसे हुए थे और आज उन्हें हार कर अपनी जान देनी पड़ रही थी। अरमान ने एक नज़र टाइगर मारिया की ओर देखा और फिर सभी आदमियों को एक साथ फार्म हाउस तहखाने में लेकर जाया गया। वहां ले जाकर अरमान ने उन सबके हाथ पैरों को खुलवा दिया था और बाहर से दरवाजा बंद करवा दिया था, क्योंकि अरमान अब खुद पर्सनली उन्हें सजा देना चाहता था। हालांकि अरमान बहुत कम लोगों की जान लिया करता था, वो सिर्फ अपने आदमियों के द्वारा ही ऑर्डर देकर उन्हें मरवाया करता था या फिर उन्हें चोट पहुंचाया करता था। लेकिन अब अरमान खुद शस्त्र उठा रहा था, तो इसका मतलब साफ था कि अरमान के दिल में अभी भी कुछ ऐसा था जिसके फ्रस्ट्रेशन शायद वो आज उन लोगों पर निकालने वाला था। सुमित और आकाश कभी भी नहीं चाहते थे कि अरमान किसी की भी जान ले, क्योंकि नॉर्मली वो लोग अगर किसी की जान लेते थे गोली मार देते थे या उनके पेट में चाकू घुमा दिया करते थे
या किसी और तरीके से इजी मौत दे दिया करते थे। लेकिन अरमान सिंघानिया की हाथों के द्वारा दी गई मौत बिल्कुल भी इजी नहीं होती थी। और वैसे भी जो लोग इस वक्त वहां मौजूद थे वो सभी एक से बढ़कर एक क्रिमिनल थे, और इसीलिए अरमान सबकी हिस्ट्री जियोग्राफी सब निकलवा चुका था और अपने हाथों से उन्हें सजा देना चाहता था। जल्दी ही उसे कमरे में से बड़ी ही भयानक आवाज आने लगी थी। एक बार को ध्रुव आहान से बोला भी था, भाई वो 13-14 लोग हैं और सभी एक से बढ़कर एक खूनी और दरिंदे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अरमान भाई को हमें उनके साथ इस तरह से अकेला छोड़ना चाहिए और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तभी आकाश ने मुस्कुराकर ध्रुव की ओर देखा था। तब ध्रुव झेप गया था, क्योंकि आकाश की मुस्कुराहट नॉर्मल नहीं थी और वो ऐसा लग रहा था मानो कि उसे कहना चाह रहा हो कि तुम डेविल किंग के बारे में बात कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि उसे किसी की मदद की जरूरत होगी? हाँ, और वैसे भी उसे डेविल किंग बनने का कभी भी शौक नहीं था, वो तो हमने ही लोगों की मदद करने के लिए ये रास्ता चुना था कि अगर हम लोग इस फील्ड में होंगे तो हम काफी ज्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे। सब एक तरह के आम लोगों के लिए सेवियर थे, लेकिन खूनी दरिंदों और साथ ही क्रिमिनल्स के लिए वो एकदम यमराज बन जाया करते थे। वहीं दूसरी ओर आस्था, जो कि गहरी नींद में सोई हुई थी, तभी अचानक आस्था की आंखों के सामने कुछ धुंधली धुंधली सी तस्वीर आने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो कि एक जगह आग लगी हुई हो और आस्था उस आग में फंसी हुई थी, और इधर उधर आस्था अपनी गर्दन अब जोरों से हिलाने लगी थी। उसके माथे से पसीना निकलना शुरू हो गया था। आस्था को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कहाँ फंसी हुई। ऐसा लग रहा था कि सपने में ही उसका दम पूरी तरह से घुट जाएगा। और तभी अचानक आस्था घबराकर उठकर बैठ गई थी और उसका पूरा बदन एयर कंडीशनर में भी पसीना पसीना हो गया था। आस्था ने अपने आसपास देखा, उसे अरमान कहीं भी दिखाई नहीं दिया। अब तो आस्था काफी हद तक हैरान हो गई कि आखिरकार इस वक्त उसका पति अरमान कहाँ जा सकता है। आस्था जल्दी से उठी, क्योंकि एक तो वो घबराई हुई थी और डर गई थी, और ऊपर से अरमान अब कमरे में नहीं था। तब घबराई से आस्था ने चारों तरफ अच्छी तरह से देखना शुरू कर दिया था, लेकिन अरमान उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया, ना बालकनी में ना वॉशरूम में। फिर हार कर आस्था ने बाहर की ओर देखना शुरू कर दिया था। जैसे ही वो बाहर गई उसने ढूंढना शुरू किया। उसने सोचा कि वो जिम वाले कमरे में जाकर एक बार चेक कर ले, लेकिन वहां पर भी अरमान नहीं था। पूरा का पूरा सिंघानिया मेंशन इस वक्त उसे एक भूतिया बंगले जैसी फीलिंग दे रहा था। आस्था डरती हुई हर जगह खोज रही थी, लेकिन उसे अरमान कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तभी आस्था ने अपनी आंखें बंद की थीं और एक गहरी लंबी सांस लेते हुए वापस अपने कमरे में आ गई और कमरे के सारे लाइट्स ऑन कर लीं, और बालकनी में खड़ी होकर वो सिंघानिया मेंशन के बड़े ही खूबसूरत गार्डन को देखने लगी थी। उस वक्त आस्था की नींद पूरी तरह से गायब हो चुकी थी, क्योंकि रात के 3:30 बज रहे थे, लेकिन उसका पति उसके साथ कमरे में नहीं था। आस्था को ये बात अजीब भी लग रही थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि वो अपने पति के बारे में पूछे तो पूछे किससे। इसलिए आस्था ने थोड़ी सी झिझक के साथ आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान, उन सबको फोन करने के बारे में सोचा था, लेकिन अगले पल उसने सोचा कि अगर वो इस वक्त किसी को परेशान करेगी तो न जाने वो लोग क्या सोचेंगे कि हम अरमान जी पर शक तो नहीं कर रहे हैं। और अरमान जी इस वक्त कहाँ जा सकते हैं? हमें लगता है कि हमें अरमान जी का इंतजार करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए आस्था अब अपना लॉकेट लेकर बैठ गई थी और उसे देखने लगी और लॉकेट की ओर देखकर बोली, आखिरकार क्या राज है तुम्हारा? कब पता चलेगा मुझे तुम्हारा राज? मैं तुम्हारे सारे राज जानना चाहती हूँ। तुमसे मेरी पूरी जिंदगी जुड़ी हुई है। आखिरकार कब जानूंगी मैं ये सारे राज? ये सब बोलकर आस्था की आंखों में कुछ आंसू आ गए थे। साथ ही साथ आस्था अपने पेट पर हाथ फेर रही थी, क्योंकि उसके साथ इस वक्त एक और जिंदगी जुड़ी हुई थी और उसकी हालत काफी अजीब हो रही थी, क्योंकि एक तो उसे अपनी पहचान पता नहीं चल पा रहा था कि असल में उसकी असली पहचान क्या थी। उसे ये तो पता चल चुका था कि उसे नानी माँ के जो बेटी और दामाद थे वो उसके असली माता पिता नहीं थे, लेकिन फिर उसके असली माता पिता के साथ क्या हुआ था? कहीं ना कहीं इस वक्त आस्था सारी चीज जानना चाहती थी, लेकिन उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। और तब आस्था नम आंखों से आसमान की ऊंचाइयों की ओर देखते हुए बोली, मैं नहीं जानती कि मेरे माँ बाप कहाँ हैं, लेकिन कोई तो मेरी मदद करो। आखिरकार कब मैं अपने माँ बाप तक पहुंचूंगी? कब मुझे मेरे जन्म की सच्चाई पता चलेगी? क्या हुआ है मेरे माँ बाप के साथ मैं जानना चाहती हूँ, और कहाँ है वो खूनी? मैं उस खूनी को देखना चाहती हूँ। ऐसे बोलकर आस्था अरमान की ओर देख रही थी। वहीं दूसरी ओर इस वक्त एक इंसान एक लाश के साथ बिल्कुल उस लाश को नग्न करके उसके ठीक बराबर में उससे चिपक कर सोया हुआ था और उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। सोते हुए भी वो इंसान बड़ा ही खतरनाक दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि मौत का अगर दूसरा कोई नाम चेहरा होता तो सिर्फ उसका खतरनाक चेहरा था।